अगला चैप्टर देखेंगे अनवाउ तवाफ, तवाफ की अकसाम। तवाफ क्या होता है? बैतुल्ला के गिर्द सात चक्कर लगाने को एक तवाफ कहते हैं और एक चक्कर को शौत कहते हैं, शीन वाउ तोय। तवाफ की पांच अकसाम हैं। नंबर एक, तवाफ कुदूम, इसका दूसरा नाम है तवाफ तहिया या तवाफ वरूद। तीनों के अंदर अगर आप देखेंगे तो दाखिल होने का मानी पाया जा रहा है। कदूम कदेमा से है, आगे बढ़ना, और तहिया वक्त मुलाकात के सलाम को कहते हैं, और वरूद वारिद होने से है। तो गोया के इस नाम से ही पता चल रहा है कि जो तवाफ सबसे पहले किया जाता है मक्का में आने के बाद, उसको तवाफ कदूम कहते हैं। दूसरा है तवाफ उमरा, उमरे की नीयत से कोई आता है तो फिर जो तवाफ होता है वो उमरे का तवाफ होता है, क्योंकि हर शख्स जो भी मक्का में आता है वो उमरे की नीयत नहीं करके आता, तो वो सिर्फ तवाफ़े कुदूम करेगा। तवाफ़े इफाज़ा है तीसरा, अफाज़ा यफीज़ू, कुरान पाक में ये लफ्ज़ आता है फा या दुआत से। ये हज का एक लाजमी रुकन है, इसको तवाफ़े हज या तवाफ़े ज़्यारत भी कहते हैं, यानी इसके बगैर हज मुकम्मल नहीं होता। और चौथा है तवाफ़े विदा, विदा होने के वक्त इस लफ्ज़ से ही पता चल रहा है कि ये तवाफ़े कुदूम की ज़िद है, कि जब हम मक्का से जा रहे होते हैं अलविदाई तौर पे जो तवाफ़ किया जाता है उसको कहते हैं। और तवाफ़ नफली तवाफ़ हर वक्त एनी टाइम जो भी मदीना में मक्का में रहता है, सुबह रात शाम कभी भी कर सके, उसको नफली तवाफ़ कहते हैं। पांचवें इकसाम की तफसील हम अब देखेंगे। मक्का मुकरमा में दाखिल होने के बाद सबसे पहले जो तवाफ़ किया जाता है, इसे तवाफ़ कुदूम या तवाफ़ तहिया यह तवाफ़ वरूद कहा जाता है। अन इब्ने उमर रदियल्लाहु अन्हुमा फ़क़द हज्ज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तवाफ़ बिल बैती क़ब्ल अन यातियल मौक़िफ़। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज अदा किया और अरफात जाने से कबल तवाफ़ तहिया अदा किया, इसे मुस्लिम ने रिवायत किया। अब इस तवाफ़ के लिए हुक्म क्या है? पहली बात है कि ये मसनून है, वाजिब नहीं। अगर कोई शख्स मक्का मुकरमा जाने की बजाय सीधा मिना या अरफात चला जाए तो इस पर कोई दम या फ़दिया नहीं है। उम्रा अदा करने वाला शख्स मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचकर सबसे पहले जो तवाफ़ अदा करता है, इसे तवाफ़े उम्रा कहा जाता है। अन इब्ने अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अस्हाबुहु एतमरु मिनल जारानती فرملوا بالبيت وجعلوا أرضيتهم تحت آباتهم قد قذفوها على أواتقهم أواتقهم اليسرى। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा जराना से अहराम बांध कर उमरा अदा करने के लिए आए तो तवाफ़ उमरा में अपनी चादरें दाएं मोंडों से नीचे निकाल कर बाएं मोंडे पर डाल दी। इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया। मोंडा कहते हैं शोल्डर को, कंधे को, जिस तरह साड़ी के कपल्लू एक तरफ लेके जाया जाता है उसी कैफियत की तरफ इशारा है। तो ये एक ख़ास अहराम की हालत है जो मर्दों के लिए है, औरतों के लिए नहीं। तवाफ़े उम्रा उम्रे का रुकन है, इसके बगैर उम्रा अदा नहीं होता। मोतमिर यानी उम्रा अदा करने वाले का तवाफ़ उम्रे ही का तवाफ़े उम्रा ही इसका तवाफ़े कुदूम या तवाफ़े तहिया या तवाफ़े वुरूद कहलाएगा। यानी जब कोई उम्रे के लिए आता है तो ज़ाहरी बात है कि लोग उम्रे की नीयत से सबसे पहले तवाफ़ ही करते हैं, तो फिर उसके लिए अलग से तवाफ़ करना लाजमी नहीं, इंशाल्लाह इस एक में ही उसको दो काजिर मिलेगा। 10 ज़िलहज को मीना में कुर्बानी करने के बाद मक्का मुकरमा आकर बैतुल्ला शरीफ का तवाफ़ करना फ़र्ज है। इसे तवाफ़े इफाज़ा या तवाफ़े ज़ियारत या तवाफ़े हज कहते हैं। अन आयशा रदियल्लाहु अन्हा अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरादा من صفية بعد ما يريد الرجل
من
أهله
فقالوا
إنها
حائض
يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنها لحابستنا فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها قد زارت
يوم النحر
قال فلتنفر معكم. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے اس کام کا ارادہ کیا جو مرد اپنی بیوی سے کرتا ہے. دوسری ازواج مطہرات نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صفیہ تو حیض سے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا پھر تو اس نے ہمیں مدینہ واپس جانے سے روک لیا. ازواج مطہرات نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صفیہ قربانی کے دن طواف زیارت تو کر چکی ہیں. تب آپ نے ارشاد فرمایا پھر وہ تمہارے ساتھ واپس روانہ ہو جائیں. اسے مسلم نے روایت کیا. کیا پتہ چلا کہ اگر کوئی عورت پیریڈس میں ہے اور نہ تو اس نے طواف کیا 10 ذی الحج کو جو کہ جا کے کرنا ہوتا ہے طواف حفاظہ, تو پھر وہ نہیں جا سکتی جب تک کہ وہ پیریڈ سے فارغ ہو کے وہاں طواف نہ کر لے. لیکن جس نے حج کے اگلے دن یا جو بھی 3 دن کی رخصت ہوتی ہے یام تشریق کے دنوں میں اگر طواف کر لیا تھا تو اس کے بعد پھر الوداعی طواف اگر نہ بھی کر سکے تو جا سکتی ہے. بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھتے بھی ہیں. تو اگر تو طواف کر چکے تھے تو پھر آخر کا طواف لازمی نہیں ہے. اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے نا کہ کتنی اہمیت ہے اس بات کی کہ جب مکہ کو چھوڑیں تو بس آخر میں طواف کریں. بعض لوگ اس وقت بھی بازاروں میں بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ وہ فلاں چیز دیکھی تھی, وہ لینی ہے, وہ کھانا ہے, وہ پینا ہے, سارے کام کر لیں, سامان باندھ کے اپنا باہر رکھ لیں ہوٹل میں اور جا کے طواف کریں تاکہ اللہ کو ہم بتا سکیں کہ جب آئے تھے تو بھی سیدھا ہم تیرے گھر آئے اور جا رہے ہیں تو دنیا کی محبت نہیں بلکہ تیری محبت کو لے کے جا رہے ہیں. تو یہ قسم کا سمبل بھی ہے. حج ادا کرنے کے بعد مکہ معظمہ سے رخصت ہونے سے قبل بیت اللہ شریف کا طواف کرنا واجب ہے. اسے طواف وداع کہتے ہیں. اس کی دلیل آگے آئے گی حدیث نمبر 351 میں. طواف قدوم, طواف عمرہ, طواف افاضہ اور طواف وداع کے علاوہ جو بھی طواف کیا جائے گا وہ نفلی طواف کہلائے گا. بیت اللہ شریف میں قیام کے دوران تمام نفلی عبادات میں نفلی طواف سب سے افضل ہے. کیوں بھلا؟ اس لیے کہ یہ ایسی چیز ہے جو ہم کہیں اور جا کے نہیں کر سکتے. وہاں جا کے نفل پڑھیں, کیا کریں, بک پڑھیں, تو طواف کرنا زیادہ افضل ہے تاکہ انسان اپنے ساتھ وہ نیکی لے کے جائے جو کہ اس کو دوسری جگہ مشکل ہے. لیکن مسلسل نہیں کر بھی سکتے تو یہ نہیں کہ آپ جا کے صرف طواف ہی کریں, مطلب یہ ہے کہ اہتمام اس کا کیا جائے.